ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसकी शुरुआत एक बहुत ही नाटकीय दृश्य से होती है। सोचिए, एक आलीशान घर जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, वो धुंधुकर जल रहा है।
और शक है घर की ही सबसे छोटी बेटी पर।
बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं सेलेस्ट इंग के मशहूर नॉवल लिटिल फायर्स एवरीवेयर की।
ये किताब हमें उस आग से ठीक एक साल पीछे ले जाती है, ये देखने के लिए कि वो चिंगारियां आखिर सुलग कहां रही थीं।
हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली किरदार तो वो जगह है, शेकर हाइट्स, ओहायो। लेखिका सेलेस्ट इंग खुद वहां पली बड़ी हैं और उन्होंने उस शहर को एक किरदार की तरह ही दिखाया है।
एक ऐसा शहर जो सिर्फ शहर नहीं, एक सपना है।
हाँ, एक ऐसा सपना जहां हर चीज नियमों से चलती है। मतलब लॉन की घास कितनी लंबी होगी से लेकर घरों के रंग तक सब कुछ तय है।
एक परफेक्ट दुनिया बनाने की कोशिश, और यही इस नॉवल का दिल है। ये कहानी इसी गहरे सवाल को कुरेदती है कि क्या होता है जब नियमों पर बनी एक आदर्श दुनिया का सामना
इंसानी भावनाओं, रहस्यों और जुनून की बेतरतीब आग से होता है।
तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत में दो परिवार आमने सामने आते हैं।
हाँ, एक तरफ है रिचर्डसन परिवार, जो शेकर हाइट्स के उसूलों का आप कह सकते हैं जीता जागता सबूत है। मिसेस एलेना रिचर्डसन एक पत्रकार हैं और उनका मानना है कि अगर आप नियम फॉलो करें, मेहनत करें, तो जिंदगी में सब सही रहता है।
और बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल पोस्टर परफेक्ट लगता है,
बिल्कुल बाहर से देखने पर।
क्योंकि इसी परफेक्ट घर में किरायेदार बनकर आती हैं मिया वॉरेन और उनकी टीनेज बेटी पर्ल।
और मिया तो एलेना की दुनिया का ठीक उल्टा है। वो एक आर्टिस्ट है, आजाद ख्याल।
उनकी जिंदगी किसी नियम या योजना से नहीं चलती।
नहीं, वो और पर्ल एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपनी कला के लिए प्रेरणा ढूंढते हुए।
और जैसे ही ये दो दुनियाएं टकराती हैं, एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है।
हाँ, खासकर बच्चों के बीच। पर्ल, जिसने हमेशा एक अस्थिर जिंदगी देखी है, वो रिचर्डसन परिवार की स्थिरता की तरफ खींची चली जाती है।
उसे पहली बार एक सामान्य जिंदगी का एहसास होता है।
और दूसरी तरफ है रिचर्डसन परिवार की सबसे छोटी बेटी इजी,
जिसे सब परिवार की काली भेड़ समझते हैं।
हाँ, और वो मिया में अपनी जैसी ही एक आत्मा दिखती है। इजी थोड़ी विद्रोही है, इमोशनल है और अपनी माँ के बनाए सांचे में फिट नहीं होती।
एलेना को तो लगता है कि इजी में कोई खराबी है,
लेकिन मिया उसके अंदर के कलाकार को पहचानती है। उसे वो समझ देती है जो उसे अपने घर में कभी नहीं मिली।
ऐसा लगता है जैसे दोनों परिवारों के बच्चे अपने अपनी माँ को बदलना चाहते हैं।
बिल्कुल, और यहीं से पहली छोटी छोटी चिंगारियां सुलगना शुरू होती हैं। लेकिन ये सब तो बस आने वाले तूफान की आहट है। कहानी में असली विस्फोट होता है एक गोद लेने के विवाद से।
हाँ, ये विवाद ही इस नोवेल की नैतिक रीढ़ है ना? यहीं पर सारे किरदार अपनी अपनी मान्यताओं की कसौटी पर परखे जाते हैं।
हाँ, तो होता यह है कि एलेना की एक दोस्त है मैकलॉ परिवार। वो सालों से बच्चा गोद लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एक चीनी अमेरिकी बच्ची मिलती है जिसे कोई फायर स्टेशन पे छोड़ गया था।
और वो उसे गोद ले लेते हैं।
हाँ, उसका नाम मिराबेल रखते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद बच्ची की असली माँ बीबी चाओ सामने आ जाती है। वो एक गरीब अप्रवासी है जिसने हताशा में अपनी बच्ची को छोड़ा था और अब वो उसे वापस चाहती है।
और बस यहीं से पूरा शहर मतलब एक जंग के मैदान में बदल जाता है।
ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रहती,
नहीं, ये सोच की लड़ाई बन जाती है। एलेना और ज्यादातर लोग मैकलॉ परिवार का साथ देते हैं।
उनका तर्क सीधा है, बच्ची को एक अमीर, स्थिर, एक बेहतर भविष्य मिलेगा।
वो मानते हैं कि वो सही हैं।
लेकिन मियां वो बीबी चाओ के साथ खड़ी हो जाती है। वो एक माँ का दर्द समझती है, उसकी बेबसी। उसके लिए मातृत्व का रिश्ता खून का है, किसी कानूनी कागज का नहीं।
और जब मिया स्टैंड लेती है तो एलेना इसे व्यक्तिगत तौर पे ले लेती है।
हाँ, उसे लगता है मिया उसके जीने के तरीके को उसके उसूलों का चुनौती दे रही है।
और ये लड़ाई अब एलेना बनाम मिया की बन जाती है।
बिल्कुल, और यही किताब अपने सबसे बड़े सवाल पर आती है।
एक अच्छी माँ कौन है?
हाँ, क्या वो जो जन्म देती है या वो जो बेहतर परवरिश दे सकती है? मातृत्व आखिर है क्या, एक भावला या एक जिम्मेदारी?
और लेखिका किसी को सही या गलत नहीं ठहराती, जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
बिल्कुल, वो बस हमें हर माँ के नजरिए की जटिलता दिखाती हैं। एलेना को लगता है वो परफेक्ट माँ है क्योंकि उसने हर सुविधा दी है,
लेकिन वो अपनी ही बेटी इजी को समझने में पूरी तरह नाकाम रहती है।
और उधर मियाँ जो पर्ल के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है,
लेकिन वो पर्ल से उसकी जड़ों का, उसके अतीत का सच छिपाती है।
तो हर माँ अपने तरीके से सही होते हुए भी कहीं ना कहीं चूक रही है।
और इसी जिद में, ये साबित करने की जिद में, एलेना अपनी पत्रकारिता की ताकत का इस्तेमाल करती है।
हाँ, वो मियाँ के अतीत को खंगालने में लग जाती है। उसे लगता है कि अगर वो मियाँ के किरदार पर कोई दाग लगा दे तो वो ये जंग जीत जाएगी।
और यहीं से कहानी में भूचाल आता है।
हाँ, एलेना की जासूसी एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसे पता चलता है कि मियाँ का असली नाम मियाँ राइट है।
और पर्ल?
पर्ल उसकी अपनी बेटी नहीं है,
नहीं,
मियाँ एक सरोगेट माँ थी।
क्या?
हाँ, उसने न्यूयॉर्क के एक अमीर जोड़े के लिए गर्भ धारण किया था, लेकिन गर्भावस्था के दौरान उसे उस बच्चे से इतना लगाव हो गया
कि वो पैसे लेकर बच्चे के साथ भाग गई।
और वो बच्चा पर्ल थी।
बाप रे, मतलब मियाँ जो जैविक अधिकार के लिए लड़ रही थी, उसने खुद किसी और से उसकी जैविक संतान छीन ली थी।
हाँ, ये तो कहानी की पूरी नैतिक तस्वीर ही बदल देता है।
और यहीं से सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है।
बहुत तेजी से एक तरफ अदालत का फैसला मैकलो परिवार के हक में आता है,
बीबी चाऊ अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देती है,
और दूसरी तरफ उसी दिन एलेना एक अजीब सी क्रूरता में पर्ल को उसकी पैदाइश का सच बता देती है। वो एक झटके में उस लड़की की पूरी दुनिया, उसकी पहचान को तहस नहस कर देती है।
ये बहुत बहुत ही ज्यादा क्रूर है। उसने ये सिर्फ मियाँ को चोट पहुंचाने के लिए किया।
बिल्कुल। इसके बाद मियाँ और पर्ल के पास शेकर हाइट्स छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। लेकिन जाने से पहले एलेना और इजी के बीच आखिरी और सबसे भयानक टकराव होता है।
और गुस्से में एलेना अपनी बेटी से वो शब्द कह देती है जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते।
हाँ, वो कहती है, मैं तुम्हें कभी चाहती ही नहीं थी।
और यही वो पल है जो इजी को पूरी तरह तोड़ देता है।
और इसी टूटे हुए दिल के साथ, जब उसे लगता है कि उसके घर में उसके लिए कुछ नहीं बचा,
वो एक एक करके घर में हर किसी के बिस्तर पर छोटी छोटी आग लगा देती है।
ये सिर्फ घर जलाना नहीं है, है ना?
नहीं, ये एक प्रतीकात्मक कार्य है।
हाँ, उस घर के अंदर दबे झूठ, पाखंड और उस घुटन को जलाने की कोशिश जिसे वो हमेशा महसूस करती थी।
और यहीं हम नॉवल के शीर्षक लिटिल फायर्स एवरीवेयर के असली मतलब तक पहुंचते हैं।
सही कहा, वो आखिरी आग तो बस नतीजा थी।
असली छोटी छोटी आग तो पूरे नॉवल में हर किरदार के अंदर सुलग रही थी।
बिल्कुल। लेक्सी का झूठ, मूडी की जलन, एलेना की जिद, मियाँ का राज,
ये सब वो छोटी छोटी चिंगारियां थीं जो धीरे धीरे सुलग रही थी।
नॉवल में मियाँ का एक दर्शन है जो वो इजी को समझाती है। वो कहती है, कभी कभी सबको जलाकर राख कर देना जरूरी होता है ताकि नई शुरुआत हो सके।
जलने के बाद जमीन और उपजाऊ हो जाती है।
शायद रिचर्डसन परिवार के लिए ये आग एक दर्दनाक लेकिन जरूरी सफाई थी।
यह उपन्यास हमें कोई आसान जवाब या कोई हीरो विलन नहीं देता। हर किरदार अपनी जगह सही और गलत दोनों है।
शायद इसकी सबसे बड़ी सफलता यही है, यह हमें दिखाता है कि अच्छी नीयत होने के बावजूद हम कैसे दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं।
और एक आदर्श जिंदगी का सपना असल में कितना खोखला हो सकता है। यह संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनोखी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।